नमस्कार भारत, तारीख 7 जून, दिन रविवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज है दूसरा दिन। भारत बांग्लादेश ने किए लैंड बाउंड्री समेत 22 समझौते।
দুদেশের জনগণের মধ্যে নিবিড় যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।
বার বার উঠ রহা হ্যায় রাম মন্দির মুদ্দা, ক্যা কিসি রণনীতি কে তহত হ্যায়, করেঙ্গে বিশ্লেষণ। নেপাল কে ভূকম্প পীড়িতো কি জিন্দগি কি জদ্দোজহদ অভি ভি হ্যায় জারি।
কিসি লায়ক নেই রেগা, হামারা 10 আদমি কা পরিবার হ্যায়, পুরা 5 বচ্চে হ্যায়, সব বড়া ফ্যামিলি হ্যায়। অভি দোকান ধস গিয়া হ্যায় তো ইসকা হাম লোগ ক্যাসে ক্যা গুজারা করে। হাম
खबरें और भी होंगी, साथ ही होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले थोड़ा सा रुकेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अनुराग शर्मा से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। मोदी आज बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मोदी ढाकेश्वरी देवी के मंदिर और रामकृष्ण मिशन भी जाएंगे। कल भारत और बांग्लादेश के बीच कई समझौतों पर दस्तखत हुए, इनमें जमीन और परिवहन संबंधी अहम समझौते भी शामिल हैं। तुर्की में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान की AKP पार्टी के लिए ये चुनाव बीते 13 साल में सबसे बड़ी चुनौती है। इस बीच पुलिस ने कहा है कि शुक्रवार को दियार बाकिर इलाके में एक चुनावी रैली में हुए धमाके घर में बने बम से किए गए थे। ये धमाके कुर्द समर्थक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सभा में हुए थे। तुर्की के प्रधानमंत्री अहमद दावतोगलू ने इन्हें उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा, एक गंदे उकसाने वाले हाथ ने दियार बाकिर में रैली में धमाके किए। जिसने भी ये किया है, जो भी वजह रही हो, उनका निशाना कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि तुर्की और तुर्की का लोकतंत्र है। अहमद दावतोगलू के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मुंबई के चांदीवली में एक रिहायशी इमारत में लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग जख्मी हुए हैं। आग इस 22 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी और थोड़ी देर में 16वीं मंजिल तक फैल गई। दमकल विभाग की 17 गाड़ियों ने 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग में मरने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। 5 लोगों के शव इमारत की लिफ्ट में मिले। पाकिस्तान के कबायली इलाके उत्तरी वजीरिस्तान से मिली सूचनाओं के अनुसार अमरीकी ड्रोन हमले में कम से कम 7 कथित चरमपंथी मारे गए हैं। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये हमला शनिवार को शव्वाल इलाके में पाकिस्तान अफगान सीमा के पास हुआ। उन्होंने बताया कि अमरीकी ड्रोन विमान ने एक मकान पर 2 मिसाइलें दागी जिससे वहां मौजूद 7 लोग मारे गए। दक्षिण कोरिया में सरकार ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के 14 और मामले सामने आने की बात कही है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 5 हो गई है। ज़्यादातर नए मामले राजधानी सोल के एक अस्पताल में सामने आए हैं। यहां उन लोगों को रखा गया है जिन्हें बीमारी होने का सबसे ज़्यादा खतरा है। अब तक 64 लोग इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। दक्षिण कोरिया के एक कारोबारी को सऊदी अरब की यात्रा पर मर्ज का संक्रमण हुआ था। इसके बाद से दक्षिण कोरिया में ये बीमारी फैली है। एक ब्रितानी नौसैनिक अधिकारी का कहना है कि लीबिया में 5 लाख लोगों की इकट्ठा होने के संकेत मिले हैं। उनके मुताबिक ये लोग भूमध्य सागर को पार कर यूरोप में घुसने की कोशिश कर सकते हैं। शनिवार को यूरोपीय देशों के कई लड़ाकू जहाजों और तटरक्षक नावों ने 2000 लोगों को बचाया था। यूरोप में बेहतर जीवन की चाह रखने वाले हजारों लोग सूडान, एरिट्रिया और सोमालिया जैसे देशों से लीबिया पहुंचते हैं। वहां से ये लोग छोटी छोटी नावों में बैठकर इटली और दूसरे यूरोपीय देशों के तट तक आने की कोशिश करते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट यानी कि भूमि सीमा समझौता, जिसे कि भारत की संसद पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 2 बस सेवाओं की भी शुरुआत की गई। एक रिपोर्ट समीर आत्मज मिश्र से सुनते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की पहली यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने एक ऐतिहासिक समझौते पर मुहर लगाई जिससे कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान के जरिए 41 साल पुराने भूमि सीमा विवाद का निपटारा हो सकेगा। मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भूमि सीमा समझौते से जुड़े दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जिसे पिछले महीने भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इस मौके पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद थीं। इसके अलावा मोदी और शेख हसीना के बीच विस्तृत वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने 22 अन्य समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें सामुद्रिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग, मानव तस्करी और जाली भारतीय नोट का प्रसार रोकने के लिए समझौते शामिल हैं। समझौते के बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया,
इन शॉर्ट व्हाट वी हैव अचीव्ड टुडे इज टू प्लेस आवर रिलेशनशिप ऑन अ कंप्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म।
हमारी उपलब्धि यही रही कि हम भारत बांग्लादेश के संबंधों को एक बिल्कुल नए मंच पर लेकर आए हैं। इस मंच पर हमारे व्यापारी समुदाय, छात्र, शिक्षक और वैज्ञानिकों को पूरी आज़ादी होगी कि वे आपसी संबंधों से मिलने वाले विभिन्न मौकों को तलाश कर सकें और उनसे लाभ उठा सकें। मैं कहना चाहूँगा कि भारत बांग्लादेश संबंधों में वाकई असीमित संभावनाएं हैं।
भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है और ये मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा अड़चन बना हुआ था। भारत के असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय के हिस्से इस करार के तहत आते हैं। दो दिन की यात्रा पर ढाका पहुंचे नरेंद्र मोदी का ढाका में जोरदार स्वागत किया गया। सड़कों पर मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उनका देश अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों का हिमायती है।
द फ्यूचर आई ड्रीम ऑफ इंडिया इज द फ्यूचर आई विश फॉर बांग्लादेश।
नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ सहयोग करते हुए विकास करना चाहता है जिसमें पड़ोसी देश भी संपन्न हो। जो सपना मैंने भारत के भविष्य के लिए देखा है, मैं वही भविष्य बांग्लादेश के लिए भी चाहता हूँ। जल बंटवारा भी कुल मिलाकर मानवीय मुद्दा है। ये सीमा के दोनों ओर के लोगों के जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी बताते हुए कहा कि मोदी की यात्रा ने नई उम्मीद जगाई है और इससे हमारे संबंध मजबूत होंगे।
नदी व्यवस्थापना लक्ष्य एक साथ काज कर विषय आलोचना कर।
जिन समझौतों पर हमने आज दस्तखत किए उनसे व्यापार और निवेश के क्षेत्र में नए द्वार खुलेंगे। समझौतों को वास्तविकता में बदलना अधिक महत्वपूर्ण है। हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं और इस क्षेत्र की संपन्नता सुनिश्चित कर सकते हैं, जो मुजीबुर रहमान का सपना था। ये थे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के शब्द। 1947 से ही सरहद के दोनों तरफ ऐसी 111 भारतीय बस्तियां और 51 बांग्लादेशी बस्तियां हैं जो गलत तरफ पड़ गई हैं। इन बस्तियों में 51,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। सीमा समझौते के बाद ये एनक्लेव उन देशों का हिस्सा हो जाएंगे जहां वे पढ़ते हैं और यहां रहने वाले अपनी नागरिकता चुन सकेंगे। इस समझौते को सीमा विवाद को सुलझाने और दोनों देशों के बीच तालमेल बेहतर करने के साथ ही अवैध घुसपैठ और तस्करी रोकने की दिशा में भी अहम करार माना जा रहा है।
ये थी समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। भारत की खबरों पर बाद में लौटेंगे, लेकिन इस समय हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबर की। यूक्रेन की राजधानी कीव में गे प्राइड परेड पर हुए हमले के सिलसिले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झड़पों में 5 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए अनुराग शर्मा से।
कीव में समलैंगिक कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम को बहुत पहले से धमकियां मिल रही थी। यूक्रेन के कई नेताओं और उग्र दक्षिणपंथी समूह राइट सेक्टर ने कार्यक्रम में खलल डालने की धमकी दी थी। कीव के मेयर विताली लिशको ने कार्यक्रम के आयोजकों से अपील भी की थी कि राजधानी में टकराव से बचने के लिए वो कार्यक्रम ना करें। किसी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए सैकड़ों पुलिस वालों को भी तैनात किया गया था, लेकिन जब निप्रो नदी के किनारे समलैंगिक कार्यकर्ता जुटे तो उन पर अचानक कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पत्रकार मैक्सिम टकर तब घटना स्थल पर ही मौजूद थे। उन्होंने बताया,
about 200 marchers were lined up at one end of the march route and flanked either side by several hundred policemen. There were
करीब 200 प्रदर्शनकारी एक ओर खड़े हुए थे और उनके दोनों ओर पुलिस वाले थे। पुलिस वालों की संख्या करीब 2000 थी। तभी अचानक धुआं उठने लगा, लोग मशाल के साथ भागते दिखे। कुछ लोग जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा था मार्च की तरफ बढ़ने लगे। उनमें से करीब 20 लोग पुलिस का घेरा भेदने में कामयाब हो गए। उन्हें पुलिस ने तेजी से रोका और जमीन पर गिरा दिया। हमने कई लोगों को देखा जो खून में लथपथ थे। पत्रकार मैक्सिम टकर के शब्द। ओलेक्जेंडर हुसैफ नाम के एक प्रदर्शनकारी का कहना था कि एक पुलिस वाले को गंभीर चोटें आई हैं। ओलेक्जेंडर हुसैफ कह रहे थे कि झड़प के शुरू होते ही एक पुलिस वाले को गर्दन में गंभीर चोट आई। जब मार्च शुरू हुआ तो हमने देखा कि सड़क पर खून पड़ा हुआ था। कुछ लोगों का कहना था कि उन पर पेट्रोल बम से हमला किया गया और कुछ का कहना है कि उन्हें चाकू मारा गया। प्रदर्शनकारी ओलेक्जेंडर हुसैफ के शब्द। झड़प के कुछ ही देर बाद यह रैली खत्म हो गई। यूक्रेन में यूरोप समर्थक सरकार बनने के बाद समलैंगिकों के अधिकारों के लिए समर्थन बढ़ा है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि समलैंगिकों को अब भी स्वीकार नहीं किया जाता। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता ओल्गा कहती हैं, ओल्गा कह रही थी कि यहाँ आने का मेरा मकसद इस मसले पर अपनी राय जाहिर करना था। मैदान में हुए प्रदर्शनों को 2 साल बीत चुके हैं। ये साल 2015 चल रहा है, लेकिन यूक्रेन में इस मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं आया। भेदभाव विरोधी बिल पर अभी तक मतदान नहीं हुआ। समलैंगिक अधिकार कार्यकर्ता ओल्गा के शब्द। यूक्रेन में साल 2013 में पहला गे प्राइड मार्च हुआ था। तब एक अदालत के आदेश के बावजूद इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था।
रुख आइए एक बार फिर से भारत का करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लेकर संघ परिवार में बयानबाजी लगातार बढ़ती जा रही है। पहले विनय कटियार और योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए सरकार से पहल करने की बात कही। इसके बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में इसकी बात का समर्थन किया गया और अब विश्व हिंदू परिषद भी इसके समर्थन में आ गई। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता सुरेंद्र जैन ने सरकार को चेताया है कि यदि वो राम मंदिर नहीं बनवाती तो पूर्ववर्ती राजग यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार की तरह परिणाम भुगतने को तैयार रहे। सवाल है कि ये सब संघ परिवार की किसी रणनीति के तहत है या फिर निजी तौर पर ये बयान है। इस बारे में समीर आत्मन मिश्र ने बात की राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप सिंह से।
जो लोग बोल रहे हैं इनको आप फ्रिंज एलिमेंट नहीं कह सकते। विनय कटियार पार्टी के महामंत्री रह चुके हैं, अभी राज्यसभा में सदस्य हैं, फैजाबाद से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और राम जन्मभूमि में उनकी क्या भूमिका थी ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है, सबको पता है। तो वो अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब पार्टी में और संघ परिवार में कुछ लोग हैं जो उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनसे ये बुलवाया जा रहा है। एक राजनीति में आमतौर पर बात होती है, लोग हाशिए पर जाने लगते हैं तब इस तरह की बातें करते हैं। अभी उनकी राज्यसभा की टर्म 3 साल की बची हुई है तो वो भी कोई प्रोवोकेशन नहीं लगता है। एक समस्या ये है कि प्रधानमंत्री के सामने कि जो उनका कोर उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को लग रहा है। और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से बात कही थी मॉरेटोरियम की, कि इस तरह के विवादित मुद्दों को 10 साल के लिए हम बैक बर्नर पे रख दें, केवल डेवलपमेंट की बात करें। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन लगातार है नरेंद्र मोदी को जिससे लड़ना पड़ेगा।
प्रदीप जी, तो फिर क्या इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी या जो संघ परिवार है वो बटा हुआ है? क्योंकि अमित शाह कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि हमें कम से कम लोकसभा में 370 सीटें चाहिए और उसके कुछ ही दिन के बाद से ये विवाद जो है शुरू या इस तरह की बातें शुरू हो गई कि हमारे पास बहुमत है और हमको कोशिश शुरू करनी चाहिए राम मंदिर बनाने की।
मतभेद निश्चित रूप से दिख रहा है। एक बड़ा वर्ग है संघ परिवार में और बीजेपी में भी जिसका मानना है कि ठीक है ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सरकार की ओर से अगर कोशिशें हुई हैं कि बातचीत से कोई हल निकले जिस पर दोनों समुदाय राजी हो जाएं वो बेहतर है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि अदालत से जो हल निकलेगा उसको दूसरे पक्ष को जो हार जाएगा उसको स्वीकार कराना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि 1 साल हो गए सरकार को आए हुए, इस दिशा में कोई प्रयास भी नहीं हुआ। अब ये तो प्रधानमंत्री ही स्पष्ट कर सकते हैं कि वो दरअसल करना चाहते हैं या वो इंतजार कर रहे हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके बाद उनका जो भी मूव होगा लागू कराने के लिए उस समय वो बोलेंगे।
आरएसएस को मान लें तो उसका कितना दबाव इस मुद्दे को लेकर के प्रधानमंत्री पर दिख रहा है? इसमें ये इनके व्यक्तिगत विचार माने जाए या फिर संघ परिवार का कहीं ना कहीं कोई इशारा है इसके पीछे?
देखिए, नरेंद्र मोदी ने एक अच्छी चीज की है, उन्होंने वाजपेयी जी के शासनकाल से सबक लेकर कि संघ और भाजपा में कम्युनिकेशन का चैनल बंद नहीं किया है। और ये भी सही है कि संघ और बीजेपी जो सोचते हैं उन दोनों में फर्क है। जो पार्टी सत्ता में है वो संविधान को देखकर चलती है, तो मतभेद हैं। लेकिन संघ कोई अभी नरेंद्र मोदी पर दबाव डाल रहा हो या नरेंद्र मोदी के कामकाज से बहुत असंतुष्ट हो गया हो इसके संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए वो ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा मुद्दा हम खड़ा करें, ऐसी स्थिति पैदा करें जिसमें प्रधानमंत्री कमजोर हो जाए।
ये थे प्रदीप सिंह, जो कि विश्लेषण कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस अधिकारी और पद्म भूषण से सम्मानित एम एन बुच का कल भोपाल में निधन हो गया। 80 साल के बुच ने अंतिम सांस रात को भोपाल के एक निजी अस्पताल में ली, जहां पर वो पिछले 4 दिन से भर्ती थे। नए भोपाल की डिजाइन तैयार करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
महेश नीलकंठ बुच को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का आर्किटेक्ट माना जाता था। एम एन बुच अपने अंतिम समय तक सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। वो हमेशा अपने शहर भोपाल और मध्य प्रदेश को लेकर चिंतित रहे। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली संस्था भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन के संयोजक अब्दुल जब्बार से उनका रिश्ता काफी करीबी था।
और जब तक भोपाल है तब तक एम एन बुच का नाम शहर में रहेगा। काज के लिए जाहिर है कि वो जाने जाते हैं और डीडीए वगैरह की जो कॉलोनी है कोई एग्जाम है वो उन्हीं की देन है। कुल मिलाकर बहुत सारी सड़कें और सारे पार्क जिनका उन्होंने निर्माण किया है जिसमें उसमें किलोल पार्क और वर्धमान पार्क शामिल है, ये उनकी विरासत रहेगी भोपाल को।
वही वरिष्ठ पत्रकार और नई दुनिया के पूर्व संपादक गिरीश उपाध्याय उन्हें अच्छा प्रशासक तो मानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो पर्यावरण के लिए उनके योगदान को भी याद करते हैं।
देखिए एम एन बुच की पहचान मध्य प्रदेश में एक प्रशासक के तौर पर या एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर ही नहीं थी, वो एक विजनरी ऑफिसर थे और खासतौर से उन्होंने मध्य प्रदेश के सिटी प्लानिंग को एक नई दिशा दी। सामाजिक मुद्दों पर उनका गहरा सरोकार उनको तमाम दूसरे अफसरों से अलग खड़ा करता था। उन्होंने कई विषयों पर लिखा, खासतौर से पर्यावरण के मुद्दों को लेकर उनकी बहुत चिंता रहती थी। भोपाल के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर उन्होंने ग्रीनरी को बचाने का काम किया।
अर्थशास्त्री राजेंद्र कोठारी उन्हें 1976 से जानते थे। वो एम एन बुच को एक ऐसा इंसान मानते हैं जिन्होंने भोपाल के विकास के लिए ही अपनी जिंदगी जी।
जो भोपाल के आम आदमी दुख-दर्द को पहचानता था, 76 से मैंने उनको भोपाल के लिए लड़ते, भोपाल के लिए अपना दिलो दिमाग देते हुए देखा है। और मिस्टर बुच जैसा अफसर न तो कोई राजनीतिक उसको मैच कर सकता है न और कोई भोपाल का शहरी को मैच कर सकता।
एम एन बुच शहर की कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। समाज सेवा के क्षेत्र में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। यही वजह है कि वो हर एक भोपाल वाले के दिल में एक अलग ही मुकाम रखते थे।
ये थी भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट। पद्म भूषण से सम्मानित एम एन बुच का कल निधन हो गया। और अब कार्यक्रम में हम बात करेंगे, आज जो अखबार छपे हैं आपके सामने मौजूद हैं। अनुराग, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी मोला जी, आज के ज़्यादातर अखबारों ने भारत बांग्लादेश के बीच हुए समझौतों और प्रधानमंत्री मोदी की बांग्लादेश यात्रा को प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद खत्म। नवभारत टाइम्स लिखता है, जमीन समझौता लागू, बदला देश का नक्शा। वहीं दैनिक भास्कर ने विदेश नीति के जानकार रहीस सिंह और जी पार्थ सारथी की टिप्पणी पहले पन्ने पर दी है, जो कह रहे हैं कि मिला कम दिया ज़्यादा, फिर भी फायदे में रहा भारत। लेकिन मोहनलाल जी, मैगी पर कार्रवाई की खबरें अभी कम नहीं हुई हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मैगी विवाद के बाद अब उपभोक्ता संरक्षण कानून भी बदलेगा, करिश्मों के भ्रामक विज्ञापन बंद होंगे और जुर्माना 100 करोड़ तक बढ़ेगा। इसी के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है कि सरकार उपभोक्ताओं की तरफ से मैगी मेकर यानी नेस्ले कंपनी को सू करने वाली है, यानी उस पर उसके खिलाफ मुकदमा करने वाली है। नवभारत टाइम्स लिखता है कि पास्ता मैकरोनी की भी जांच होगी। वहीं जनसत्ता ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, मानक प्राधिकरण दूसरे ब्रांडों के नूडल्स की भी करेगा जांच। अमर उजाला ने अंदर के पन्ने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के विवाद को लेकर खबर दी है। अखबार ने नजीब जंग के हवाले से लिखा है, ईश्वर उन्हें माफ करे, वे नहीं जानते क्या बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक साक्षात्कार में जंग को भाजपा का पोलिंग एजेंट बताया था। दिल्ली के कथित सीएनजी फिटनेस घोटाले की जांच की खबर भी सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दैनिक जागरण लिखता है, 3 वरिष्ठ नौकरशाहों पर गिर सकती है गाज। और ये मामला है असल में 2002 का, दोबारा जांच का फैसला एंटी करप्शन ब्यूरो ने लिया है। तब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और 3 शीर्ष अफसर इसमें जांच के घेरे में हैं, लेकिन एक अफसर को अरविंद केजरीवाल की सरकार ही क्लीन चिट दे चुकी है। सीबीआई ने अपनी जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट दी थी उसमें दिल्ली के अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाई थी।
अनुराग, एक कार्टून मेरे सामने है और ये जनसत्ता का कार्टून है, ये इरफान का कार्टून है। इसमें जीतन राम मांझी का घर है, बंगला है, एक अणे मार्ग जो कि पटना में स्थित है, मुख्यमंत्री निवास कहलाता है। इसमें एक अधिकारी हैं और वो कह रहे हैं कि मैं लीचियां गिन रहा हूँ। परिप्रेक्ष्य साफ है कि लीचियां
आम और लीची को लेकर मोहनलाल जी बिहार में काफी विवाद चल रहा है। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि पहला हक उनका है क्योंकि आम और लीची के पेड़ उन्होंने और राबड़ी देवी ने बोए थे और नीतीश कुमार ने 24 पुलिसकर्मी लगा दिए वहां पर ताकि जीतन राम मांझी आम और लीची ना तोड़ सके।
तो
इसके अलावा मोहनलाल जी, हिंदुस्तान ने पहले पन्ने पर खबर दी है, वन रैंक वन पेंशन मानसून सत्र तक, राव इंद्रजीत सिंह को हिंदुस्तान ने कोट किया है। अंग्रेजी अखबारों की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बांग्लादेश से समझौतों को तो जगह दी ही है। एक खबर ई रिटेल कंपनियों से गुड़गांव में आ रहे बदलाव पर भी है। अखबार के मुताबिक ई रिटेल और नई कंपनियों से गुड़गांव में इस साल 12,000 नौकरियां पैदा होंगी।
तो बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग शर्मा। नेपाल में 25 अप्रैल के भयानक भूकंप के 5 हफ्ते बाद, यानी कि 1.5 महीना लगभग हो गया, जीवन अब भी सामान्य नहीं हो पाया है। हजारों इमारतें अत्यंत जर्जर हालात में खड़ी हैं। बहुत सारे रास्तों और सड़कें भूकंप के बाद से ही बंद हैं। प्रभावित लोगों की जो कठिनाइयां हैं वो भी कम नहीं हुई हैं। हमारे साथी शकील अख्तर ने काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया और उसके बाद ये रिपोर्ट भेजी।
नेपाल में भूकंप से क्षतिग्रस्त इमारतों को अब धीरे धीरे गिराया जा रहा है। जगह जगह जर्जर इमारतों को तोड़ने और लोहे की सरिया काटने का काम चल रहा है। काठमांडू के एक भूकंप प्रभावित क्षेत्र में मजदूर एक क्षतिग्रस्त भवन का मलबा हटा रहे हैं। गौतम गांगू मलबे के ढेर के निकट खड़े हैं। ये एक 5 मंजिला इमारत थी। इसमें गौतम की पत्नी और बेटी की दबकर मृत्यु हुई थी।
धेरै दुःख लागिरहेको छ, जिन्दगीमा बिर्सिन नसक्ने घडी छ। अब त्यसमा अब सबै छोरी र श्रीमती गुमाए। म अब आफ्नो दुःख
गौतम कह रहे थे कि मैं अपनी पत्नी और पुत्री को भुला नहीं पाता हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा बच गया है। अब मैं अपने बेटे के सहारे जीवन को नए मानी देने की कोशिश कर रहा हूँ। राजधानी काठमांडू का ये रास्ता दूर तक क्षतिग्रस्त है। इसकी लगभग सभी इमारतें भूकंप से असुरक्षित हो चुकी हैं, लेकिन लोग अब भी इनमें बहुत सी इमारतों में रह रहे हैं। सुवर्णा राजगुंदारी भी वहीं एक घर में रहते हैं जिसमें दरार पड़ी हुई है।
रहने के लिए डर नहीं लगता क्योंकि हम यहीं पर जन्म लिया था, यहीं पर रहना है, तो क्यों डरने के बाद नहीं। वो आप ये अर्थक्वेक तो आता ही रहना, नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगा, उसको तो पता नहीं कब आ जाएगा, उसको तो डर लेना तो ठीक नहीं है।
सहायता के नाम पर बेघर होने वालों को कुछ अनाज और तेल आदि सरकार ने दिए हैं। दूर दराज के गांव में लोगों ने अपने टूटे हुए घरों के निकट टारपोलिन के अस्थाई घर बना लिए हैं। ललितपुर जिले के एक गांव की कांची टुआरा भी ऐसे ही एक टेंट में रह रही हैं।
परेशान तो छ नि, अब यसो पार्ना बस्नु परेछ, घर छैन, फेरि यसो गरिम छ, रातभरि पानी पर्दा डर हुन्छ, दिनभरि घामले पोल्छ, यसो पार्ना बस्नु परेछ।
मायूसी और बेबसी कान्छी की आँखों से झलकती है। जिनके घर तबाह हुए उनमें से हजारों अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। घर के क्षतिग्रस्त होने के साथ अपनों के जाने का भी गम है। कल्पना गिरी अपने घर वालों के साथ 1 माह से शिविर कैंप में है।
मैं सोचती ये सपना हो, गहरी नींद का एक बुरा सपना हो। सुबह उठे तो ये कुछ भी नहीं, सब पहला जैसा था ना वैसा ही रहे, लेकिन ये नहीं है, ये हकीकत है। ये मेरा सपना, बुरा सपना नहीं, ये बुरा हकीकत हो चुका है। अब क्या करें, दोस्त लोग गुजर गए।
भूकंप से लाखों घर टूटे हैं। अब भी अधिकतर घर अत्यंत जर्जर और खतरनाक स्थिति में घनी आबादियों में खड़े हैं। मानसून निकट है, इन इमारतों को शीघ्र गिराए जाने की आवश्यकता है। यूनिसेफ के नेपाल प्रतिनिधि टोमू हजुमी कहते हैं,
Everybody has been trying their best, you know, be it government agencies or in humanitarian agencies like ours.
टोमू हजुमी कह रहे थे कि सरकार के सभी विभाग और सहायक संगठन जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है और रिसोर्सेज के अभाव के कारण तेजी से काम नहीं हो पा रहा। प्रमोद चौधरी एक सफल व्यापारी थे। एक बड़े शॉपिंग सेंटर में उनकी कई दुकानें थीं। वो दुकानों के मलबे से दबी हुई वस्तुएं समेटने की कोशिश कर रहे थे।
यहाँ पर सब्जी व्यापार करके ही ये कॉस्मेटिक दुकान 20 वर्ष से खड़ा किया है। अब परिस्थिति यह है जो हम लोग अब किसी लायक नहीं रहे। हमारा 10 आदमी का परिवार है, पूरा 5 बच्चे है, सब बड़ा फैमिली है। अभी दुकान धस गया है तो इसका हम लोग क्या उपाय करें। अब देखिए, अब ज़िंदगी अब कैसे क्या गुजारा करें हम लोग को कोई मालूम ही नहीं है, क्या किस तरह से फिर करे नहीं करे कोई समझ ही नहीं आ रहा।
पूरा नेपाल भूकंप की तबाही के प्रभाव से संभलने का प्रयत्न कर रहा है। भूकंप के 5 हफ्ते बाद भी लोगों की कठिनाइयाँ कम नहीं हुई हैं, लेकिन लोग अब अपनी परिस्थिति का मुकाबला बेहतर तरीके से करने का ढंग सीख गए हैं। शकील अख्तर, BBC, काठमांडू।
और अब उन खबरों की बात जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मोदी ढाका में ढाकेश्वरी देवी के मंदिर, रामकृष्ण मिशन और न्यू चांसरी कॉम्प्लेक्स जाएंगे। मोदी बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद से दोपहर के खाने पर मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में लोगों से बातचीत करेंगे। शाम को मोदी वापस भारत के लिए रवाना होंगे। जर्मनी के एल्माउ कैसल में आज G7 देशों के नेताओं की बैठक होगी। बैठक का संभावित एजेंडा होगा ग्रीस का कर्ज संकट, पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष और इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट की चुनौती। तुर्की में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की AKP पार्टी 13 साल में सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। उनके लिए संविधान में बदलाव के लिए ये चुनाव जीतना जरूरी है। लग्जमबर्ग में भी आज जनमत संग्रह है। लोगों से पूछा जाएगा कि विदेशियों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं, और क्या 16 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। लग्जमबर्ग की करीब 46% जनसंख्या विदेशी है। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता आज चीन समर्थित चुनाव प्रस्ताव के विरोध में अभियान शुरू कर रहे हैं। उनकी मांग है कि हांगकांग प्रशासन इस प्रस्ताव को न माने। मलेशिया के कुआलालंपुर में आज आईफा अवार्ड्स समारोह होगा।
और कार्यक्रम में अब बात करते हैं खेल समाचारों की।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल पुरुष एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल सर्बिया के नोवाक जोकोविच और 8वीं वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड के स्टेन वावरिंका के बीच खेला जाएगा। जोकोविच ने सेमीफाइनल में कल तीसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे को आखिरकार 6-3, 6-3, 5-7, 5-7, 6-1 से मात दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते शुक्रवार को जब खराब मौसम के कारण खेल रुका था, तब जोकोविच 6-3, 6-3, 5-3, 3-3 के स्कोर पर थे। मरे ने तीसरा और चौथा सेट जीता जरूर, लेकिन लगता है कि जैसे इसी दौरान उनका दम भी फूल गया और जोकोविच ने पांचवा सेट आसानी से 6-1 से अपने नाम कर फाइनल में अपनी जगह बनाई। वहीं महिला एकल वर्ग का फाइनल शीर्ष वरीयता हासिल अमरीका की सेरेना विलियम्स ने अपने नाम किया। उन्होंने चेकोस्लोवाकिया के लूसी सफारोवा को 6-3, 6-7, 6-2 से हराया। उधर बैडमिंटन के कोर्ट पर इंडोनेशिया ओपन में क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता हासिल चीन के लॉन्गचेन को हराने वाले भारत के पी कश्यप सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। पी कश्यप को 8वीं वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोतो ने 12-21, 21-17, 21-19 से मात दी। इसके साथ ही भारत की चुनौती भी पूरी तरह समाप्त हो गई।
और इससे पहले कि कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
BBC समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। तुर्की में आज संसदीय चुनाव हो रहे हैं। राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की AKP पार्टी के लिए चुनाव बीते 13 साल में सबसे बड़ी चुनौती है। मुंबई के चांदीवली में एक रिहायशी इमारत में लगी आग में 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 लोग जख्मी हुए हैं। आग इस 22 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी और थोड़ी देर में 16वीं मंजिल तक फैल गई। पाकिस्तान के कबायली इलाके उत्तरी वजीरिस्तान से मिली सूचनाओं के अनुसार अमरीकी ड्रोन हमले में कम से कम 7 कथित चरमपंथी मारे गए हैं। दक्षिण कोरिया में सरकार ने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के 14 और मामले सामने आने की बात कही है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 5 हो गई है। इराक पुलिस का कहना है कि बलादरज शहर में बम धमाके में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
तो BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो की कमान थी शाकिर आलम के हाथों में। फिर मुलाकात होने वाली है 1 घंटे बाद दूसरी सभा यानी कि विश्व भारती में। मोहनलाल शर्मा को तब तक जाने के लिए अनुमति दें। नमस्कार।